ये आकाशवाणी दिल्ली है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने यमुना नदी के तट पर छठ पूजा करने की अनुमति मांगने वाली जनहित याचिका को खारिज कर दिया है। दिल्ली सरकार ने महापर्व छठ के मद्देनजर पूरे शहर में 1000 कृत्रिम छठ घाटों का निर्माण किया है। छठ पूजा को देखते हुए आज दिल्ली एनसीआर से देश के विभिन्न हिस्सों के लिए लगभग 19 विशेष रेलगाड़ियां संचालित हो रही हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में वायु गुणवत्ता में लगातार गिरावट जारी है। आम आदमी पार्टी आगामी दिल्ली विधानसभा चुनावों के मद्देनजर 11 नवंबर से जिला पदाधिकारी सम्मेलन शुरू कर रही है और नीति आयोग ने जल प्रबंधन संरक्षण तथा सतत उपलब्धता सुनिश्चित करने के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए जल उत्सव का शुभारंभ किया। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं निखिल कुमार। दिल्ली में यमुना नदी के तट पर छठ पूजा नहीं हो सकेगी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने यमुना नदी के तट पर छठ पूजा करने की अनुमति मांगने वाली जनहित याचिका को खारिज कर दिया है। मीडिया के अनुसार जनहित याचिका में यमुना नदी के तट पर छठ उत्सव मनाने पर सार्वजनिक प्रतिबंध को चुनौती दी गई थी। इस बारे में याचिकाकर्ता पूर्वांचल नव निर्माण संस्थान ने कहा था कि ये प्रतिबंध पहली बार कोविड-19 महामारी के दौरान लगाया गया था और अब फिर से लगाया गया है। हालांकि दिल्ली उच्च न्यायालय ने प्रतिबंध हटाने से इनकार कर दिया और यमुना नदी में गंभीर प्रदूषण, संदूषण और जहरीले झाग की समस्या का हवाला दिया। रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली सरकार के वकील ने अदालत को सूचित किया कि लोगों के लिए अन्य स्थानों पर अनुष्ठान करने की वैकल्पिक व्यवस्था की गई है। दिल्ली सरकार ने महापर्व छठ के मद्देनजर 1000 कृत्रिम छठ घाटों का निर्माण किया है। मुख्यमंत्री आतिशी ने छठ पर्व की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि इस साल दिल्ली सरकार छठ का बहुत भव्य आयोजन कर रही है। उन्होंने बताया कि इन घाटों पर 7 नवंबर की शाम और 8 नवंबर की सुबह पूजा होगी। सुश्री आतिशी ने कहा कि 2014 से पहले दिल्ली में सिर्फ 60 घाट बनाए जाते थे, लेकिन आज इनकी संख्या 1000 से अधिक है। लोक आस्था का महापर्व छठ दिल्ली सहित देश के विभिन्न हिस्सों में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। छठ पर्व के दूसरे दिन आज श्रद्धालु खरना का विधान कर रहे हैं। संध्या अस्ताचलगामी सूर्य को कल और 8 नवंबर की सुबह उदयीमान सूर्य को अर्घ्य अर्पण के साथ ही छठ पर्व का समापन होगा। एक रिपोर्ट।
खरना के दिन छठ व्रती दिन भर उपवास रखकर सूर्य भगवान को अर्घ्य देती हैं और छठ माता को सूर्यास्त के बाद दूध चावल से बनी खीर गुड़ का भोग लगाने के बाद प्रसाद ग्रहण करती हैं। खरना के बाद ही छठ व्रतियों का 36 घंटे से ज्यादा समय का अखंड उपवास आरंभ हो जाता है। छठ महापर्व के तीसरे दिन श्रद्धालु डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देंगे और चौथे दिन उगते सूर्य को अर्घ्य देंगे। प्रसाद के रूप में ठेकुआ, चावल का लड्डू, ईख और अन्य सभी मौसमी फल भगवान सूर्य को अर्पित किए जाते हैं। प्रादेशिक समाचार के लिए अक्षित वैद्यान।
दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने कल 7 नवंबर को छठ पूजा के उपलक्ष्य में दिल्ली सरकार के अंतर्गत आने वाले सभी कार्यालयों में सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है। उपराज्यपाल ने मुख्यमंत्री आतिशी से 7 नवंबर को सार्वजनिक अवकाश घोषित करने के लिए पत्र लिखा था। छठ पूजा को देखते हुए रेलवे विशेष रेलगाड़ियों का संचालन कर रहा है। दिल्ली एनसीआर से देश के विभिन्न हिस्सों के लिए आज लगभग 19 विशेष रेलगाड़ियां चलाई जा रही हैं। इनमें भागलपुर, अयोध्या, गया, बलिया, पटना, सहरसा, सीतामढ़ी, दरभंगा, कटरा और मुंबई के लिए विशेष रेलगाड़ियां शामिल हैं। उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय ने आकाशवाणी को बताया कि उत्तर रेलवे सामान्य श्रेणी में यात्रा करने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए अतिरिक्त रेलगाड़ियां चला रहा है। रेलवे पहली अक्टूबर से 30 नवंबर तक लगभग 7000 विशेष रेलगाड़ियों का संचालन कर रहा है। इन विशेष रेलगाड़ियों से प्रतिदिन लगभग 2 लाख अतिरिक्त यात्री यात्रा कर रहे हैं। पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष 2800 विशेष रेलगाड़ियां चलाई गई थी। भीड़ नियंत्रण के लिए आवश्यक सुरक्षा उपाय भी किए गए हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में वायु गुणवत्ता में लगातार गिरावट जारी है। आज शाम वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI 352 पर पहुंच गया। दिल्ली के कई हिस्सों में धुंध की एक पतली परत छाए रहने से हवा की गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में बनी हुई है, जिसके कारण नागरिकों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आ रही हैं। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में एम्स के पल्मोनरी मेडिसिन के एडिशनल प्रोफेसर डॉ करण मादान ने मरीजों को अपने लक्षणों के प्रति जागरूक रहने और डॉक्टरों से नियमित जांच कराने की सलाह दी है।
जिन मरीजों को पहले से सांस की या हार्ट की तकलीफ है, हाई ब्लड प्रेशर की तकलीफ है या अस्थमा या सीओपीडी की तकलीफ है, उनको थोड़ा सतर्क रहना चाहिए कि अगर उनके कोई भी सांस की तकलीफ या सांस के जो सिम्टम हम कहते हैं उनमें कोई प्रॉब्लम आ रही है या सांस फूलना पड़ता है या खांसी बढ़ रही है, तो अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लें। अपने इनहेलर जो लेते हैं उसको नियमित समय से लें। जिन दिनों में प्रदूषण का स्तर काफी बढ़ जाता है उन दिनों में बाहर अपना जो समय बिताते हैं या हैवी एग्जर्शन बाहर थोड़ा अवॉइड करें।
भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली सरकार पर यमुना नदी की सफाई के नाम पर भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि दिल्ली सरकार ने यमुना को साफ करने के नाम पर 8,500 करोड़ रुपए का घोटाला किया है। उन्होंने दिल्ली सरकार पर प्रदूषण की रोकथाम में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया और कहा कि सरकार ने जनता के हित में काम करने के बजाय भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है। उन्होंने कहा कि छठ महापर्व पर दिल्ली सरकार ने यमुना की सफाई के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए। श्री सचदेवा ने यह भी कहा कि यमुना में जहरीले झाग की समस्या को लेकर सरकार गंभीर नहीं है और मुख्यमंत्री ने भी इसे पूरी तरह से नजरअंदाज किया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज नई दिल्ली के चाणक्यपुरी में नवनिर्मित उत्तराखंड राज्य अतिथि गृह उत्तराखंड निवास का लोकार्पण किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि पहाड़ी शैली में निर्मित यह भवन प्रदेश की अद्वितीय कला, वास्तुकला और संस्कृति का प्रतीक है। इस अवसर पर श्री धामी ने कहा कि इस भवन के बनने से राष्ट्रीय राजधानी में आने वाले प्रदेशवासियों को ठहरने की उचित सुविधा मिलेगी और उन्हें घर जैसा अनुभव प्राप्त होगा। श्री धामी ने कहा कि उनकी सरकार का लक्ष्य विकसित उत्तराखंड का निर्माण है और इस दिशा में वे तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज उत्तराखंड हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। नीति आयोग ने जल प्रबंधन, संरक्षण और सतत उपलब्धता सुनिश्चित करने के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए आज जल उत्सव का शुभारंभ किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये उत्सव 15 दिन तक चलेगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले वर्ष दिसंबर में आयोजित मुख्य सचिवों के सम्मेलन के दौरान नदी उत्सव की तर्ज पर जल उत्सव मनाने का विचार सामने रखा था। नीति आयोग ने कहा कि जल उत्सव आज से 24 नवंबर तक 20 आकांक्षी जिलों और प्रखंडों में मनाया जा रहा है। इसका आयोजन जल शक्ति मंत्रालय के राष्ट्रीय जल जीवन मिशन, पेयजल और स्वच्छता विभाग द्वारा किया गया है। एक पखवाड़े के दौरान विशिष्ट व्यक्ति और स्थानीय नेताओं द्वारा जल बंधन संकल्प दिलाया जाए और जल संपदा पर तथ्यात्मक जानकारी दी जाएगी। प्रादेशिक समाचार के लिए सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अभिषेक कपिल।
सरकार ने मेधावी विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए पीएम विद्यालक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट बैठक में लिए गए निर्णय के बारे में आज नई दिल्ली में मीडिया को जानकारी देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि विद्यार्थी उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए बिना किसी जमानत के ऋण प्राप्त करने के पात्र होंगे। उन्होंने कहा कि ये योजना इसलिए शुरू की गई ताकि वित्तीय बाधाएं भारत के किसी भी युवा को गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा प्राप्त करने से न रोक सकें। इस योजना के अंतर्गत 7.5 लाख रुपए के ऋण पर सरकार 75% की गारंटी उपलब्ध कराएगी। 8 लाख रुपए तक की वार्षिक आय वाले विद्यार्थियों को मॉरिटोरियम अवधि के दौरान 10 लाख रुपए तक के ऋण पर ब्याज में 3% की छूट भी मिलेगी। इस योजना से 7 लाख विद्यार्थी लाभान्वित होंगे। योजना के लिए पीएम विद्यालक्ष्मी पोर्टल पर आवेदन किया जा सकता है। सरकार ने भारतीय खाद्य निगम के लिए 10,700 करोड़ रुपए की इक्विटी के निवेश को मंजूरी दी है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में कहा कि ये भारतीय खाद्य निगम की परिचालन क्षमताओं को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस निवेश से सरकार पर ब्याज और सब्सिडी का बोझ कम होगा। भारतीय खाद्य निगम न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खाद्यान्नों की खरीद, भंडारण और बाजार में खाद्य उत्पादों की कीमतों को स्थिर रखकर खाद्य सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। महिला और बाल विकास मंत्रालय देश में कानूनी रूप से बच्चों को गोद लेने की प्रक्रिया के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए दत्तक ग्रहण जागरूकता माह 2024 मना रहा है। इस साल इसका विषय है देखरेख और पालन पोषण की भावना द्वारा बड़े बच्चों का पुनर्वास। केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण CARA गोद लेने से संबंधित मुद्दों पर ध्यान आकर्षित करने के लिए अन्य कार्यक्रमों के साथ साथ एक बड़े अभियान की योजना बना रहा है, जिसमें उन बच्चों को गोद लेने पर जोर दिया जाएगा जो अधिक उम्र के हैं और जिनकी विशेष आवश्यकताएं हैं। मंत्रालय इस वर्ष उत्तर प्रदेश के लखनऊ में 21 नवंबर को दत्तक ग्रहण जागरूकता माह मनाएगा। CARA ऑनलाइन कार्यक्रमों के लिए भी विशेष अभियान शुरू करेगा। गोद लेने से संबंधित जागरूकता बढ़ाने और लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए MyGov पोर्टल पर कई गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। आम आदमी पार्टी आगामी दिल्ली विधानसभा चुनावों के मद्देनजर 11 नवंबर से जिला पदाधिकारी सम्मेलन शुरू कर रही है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि यह कार्यक्रम दिल्ली विधानसभा चुनावों की तैयारियों को बढ़ावा देने और पार्टी के बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को प्रेरित करने के लिए शुरू किया जाएगा।
हर जिले में 5 विधानसभा क्षेत्र आती है, तो 11 तारीख से इन 14 जिला सम्मेलनों का आयोजन शुरू होगा। इस जिला सम्मेलन में पदाधिकारियों को आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी संबोधित करेंगे, उनके साथ साथ पार्टी के और लीडर मौजूद रहेंगे। सभी पदाधिकारियों को बूथ स्तर के, मंडल स्तर के, वार्ड स्तर के, विधानसभा स्तर के जितने पदाधिकारी हैं उनको शपथ भी दिलाई जाएगी और अगले विधानसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने का टारगेट दिया जाएगा।
दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष रामनिवास गोयल ऑस्ट्रेलिया में आयोजित 67वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन में शामिल हुए। श्री गोयल ने आज सम्मेलन को संबोधित करते हुए विभिन्न विषयों पर अपने विचार साझा किए। उन्होंने कहा कि दिव्यांग व्यक्तियों को चुनाव लड़ने और देश के विभिन्न सदनों के लिए नामांकित होने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इस सम्मेलन में राष्ट्रमंडल देशों के संसद और विधानमंडलों के पीठासीन अधिकारी भाग ले रहे हैं। सम्मेलन का समापन 8 नवम्बर को होगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि प्रदेश सरकार जल्द ही मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत आवासीय भूमि से वंचित 2,00,000 योग्य प्रार्थियों को 100-100 वर्ग गज जमीन देगी। इसके लिए अधिकारियों को आवश्यक प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दे दिए गए हैं। मुख्यमंत्री आज लाडवा विधानसभा क्षेत्र के गांव उमरी, मथाना, दबखेड़ा, वड़ैचपुर और छलौंदी में आयोजित कार्यक्रमों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि लाडवा विधानसभा सहित पूरे प्रदेश में तेज गति से विकास किया जाएगा। अधिकारियों को प्रदेश में सभी सड़कों के नवीनीकरण और मरम्मत करने के निर्देश दिए गए हैं। उमरी में लोगों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के नागरिकों ने तीसरी बार सरकार बनाकर जो विश्वास और जिम्मेदारी हमें सौंपी है उस विश्वास को बनाए रखना जरूरी है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार 3 गुना ताकत से प्रदेश का विकास करेगी।
जब मैं आदरणीय गडकरी जी के पास अभी गया तो उन्होंने तुरंत इस बात को स्वीकार कर लिया कि पेहवा से कुरुक्षेत्र बाईपास, लाडवा बाईपास होते हुए 4-लाइनिंग रोड ये सीधा यमुनानगर को टच कर जाएगा और ये 4-लाइनिंग रोड यहाँ पर बन जाएगा कि लोगों की समस्याओं का समाधान वो प्राथमिकता के आधार पर पूरा होगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं को 2100 रुपए की राशि देने के चुनावी वादे को शीघ्र ही पूरा किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में एक ट्रक ने ऑटो को टक्कर मार दी, जिसमें आज 6 महिलाओं और 3 बच्चों समेत कम से कम 10 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। हरदोई के पुलिस अधीक्षक नीरज जादौन ने बताया कि यह घटना हरदोई के रोशनपुर गांव में हुई, जहां अचानक टक्कर लगने से यात्रियों की मौत हो गई। उन्होंने कहा कि पूरी जांच के बाद ही सही कारणों का पता चल पाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सड़क दुर्घटना में लोगों की मृत्यु पर शोक जताया है। उन्होंने प्रत्येक मृतक के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2,00,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज अपने साप्ताहिक कार्यक्रम चर्चा का विषय है में जल संरक्षण प्रबंधन के लिए जल उत्सव अभियान पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। इसे आज रात 9:30 बजे से आकाशवाणी के गोल्ड चैनल और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। राजधानी दिल्ली में आज मौसम हल्की धुंध के साथ सामान्य रहा। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 32.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, वहीं न्यूनतम तापमान 17.1 डिग्री सेल्सियस रहा। विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में आमतौर पर मौसम साफ रहेगा, हालांकि रात के समय हल्की धुंध छाए रहने की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली उच्च न्यायालय ने यमुना नदी के तट पर छठ पूजा करने की अनुमति मांगने वाली जनहित याचिका को खारिज कर दिया है। दिल्ली सरकार ने महापर्व छठ के मद्देनजर पूरे शहर में 1000 कृत्रिम छठ घाटों का निर्माण किया है। छठ पूजा को देखते हुए आज दिल्ली एनसीआर से देश के विभिन्न हिस्सों के लिए लगभग 19 विशेष रेलगाड़ियां संचालित हो रही हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में वायु गुणवत्ता में लगातार गिरावट जारी है। आम आदमी पार्टी आगामी दिल्ली विधानसभा चुनावों के मद्देनजर 11 नवंबर से जिला पदाधिकारी सम्मेलन शुरू कर रही है और नीति आयोग ने जल प्रबंधन संरक्षण और सतत उपलब्धता सुनिश्चित करने के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए जल उत्सव का शुभारंभ किया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।